پوری کوالٹی کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہی, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. عارف انصار صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ اور خیر مقدم. آپ یہ بتائیے گا کہ کتنا چیلنج ہوتا ہے ایریل اسٹرائکس جو ہیں, اور اس کے اوپر آلریڈی ایک نقطۂ نظر موجود ہے, خاص طور پہ ڈرون حملوں کے خلاف ایک بڑی آواز اٹھائی جاتی ہے, تو کتنی چیلنج ہوتی ہے اس کی ایکوریسی ان حالات میں؟ لیکن اگر دوسری جانب ایک انسرجنٹس ہوں, ان کے گروپس حملے کر رہے ہوں, تو کتنی گنجائش ہوتی ہے کہ پھر فضائی کاروائیوں پہ زیادہ انحصار کیا جائے؟
اسد صاحب, یہ جو ٹاپک ہے یہ ریلیٹڈ ہے اربن وارفیئر, جو آپ سن بھی رہے ہوں گے, جو ایک بڑا پیچیدہ ٹاپک بھی ہے اور اس پہ کافی کام بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ جو سینیریو جو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں, یہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جب ایک شہر کی سچویشن میں ایک جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں سویلین بھی موجود ہیں, تو وہ اس کی آبویسلی بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور پھر انسرجنسی ہے. تو اب ایک شہر کے اندر جا کے ان کے ساتھ لڑنا, کس کس بلڈنگ میں, وہ ایک بہت ہی مشکل فیز ہوتی ہے, اور اس کے اپنے چیلنجز ہیں. اس کے دوران ایئر اٹیک کرنا وہ اور بھی زیادہ مشکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ پس منظر میں یہ پورا جو ہے, جو یہ قندوز میں چل رہا ہے آپریشن, وہ یہی ہے کہ جتنی دیر ہو رہی ہے تو ایک طرف تو پی آر پریشر آ رہا ہے افغان حکومت پہ بھی اور کوالیشن پہ بھی, اور دوسری طرف ظاہری بات ہے کہ طالبان یا جو لوگ بھی وہاں پہ ہیں وہ سچویشن کو ایکسپلوئٹ بھی کر رہے ہوں گے. لیکن بات پھر وہ اس پہ ہے کہ اربن وارفیئر جو ہے بڑی مشکل ہے. اس کی ہم نے ابھی ریسنٹ سچویشن دیکھی جو بٹابیر میں ہوئی پاکستان میں, کہ جس میں انسرجنٹس یا طالبان جو تھے وہ گیٹ کے اوپر پہنچ گئے, شہر کے اندر ہے وہ کیمپ موجود تھا. اب وہاں اس کے اندر تو گھس گئے, لیکن پھر بھی کم از کم وہ ایک پیرامیٹر تھا جس کے اندر وہ محدود تھے. اب وہ جتنا محدود ایریا ہے اتنا آسان ہوتا ہے, جتنا پورے شہر کے اندر ہیں تو اتنا ہی وہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے.
صحیح. اچھا, اب ہم دوسرے اینگل پہ آتے ہیں, طالبان کی انسرجنسی. کل بھی ہم نے اپنے پینلسٹ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کتنی یہ سرپرائزنگ فیکٹر تھا کہ طالبان جو ہیں خاص طور پہ پھر شمالی علاقوں کے اندر وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ وہ اس صوبے کے دارالحکومت پہ اپنا کنٹرول بھی قائم کر لیں بھلے کچھ گھنٹوں کے لیے. ایک بنیادی سوال یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ جب طالبان کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ اس کو ریٹین نہیں کر سکتے, واحد چیز جو ایریل سٹرائکس ہیں ان کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے, وہ اس کو ریٹین نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ان کا جانا, ان کی انسرجنسی, اس کے کیا مقصد ہو سکتے ہیں؟ کیا مذاکرات کی میز پہ کچھ گین کرنا مقصود ہے, ڈائلاگ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا مقصود ہے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے طالبان کا ان دنوں, یا اپنی صفوں میں اتحاد؟
بالکل یہی مقصد ہے کہ وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہم ابھی بھی افیکٹو ہیں. لیکن ایک شہر کا اس طرح چلا جانا وہ ایک معمولی بات نہیں ہے. کہ ایک شہر ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک سیکیورٹی کا پورا سسٹم ہوتا ہے, اور بہت سارے عوامل ہیں. تو جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ پاکستان میں وہ کیمپ کا ہوا, تو ٹھیک ہے, اس کے اپنے عوامل ہیں کہ پھر کتنا ٹائم لگا ریکور ہوا. اب ایک پورا شہر اس طرح سے چلا جائے تو اس کے بہت بڑے عوامل ہیں کہ کس ڈائریکشن سے آئے, کیا ہوا, ریئیکشن کیا ہوا, ایٹسیٹرا. پھر کیپیبلٹی کی باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ سیکیورٹی فورسز کی کتنی کیپیبلٹی تھی, نہیں تھی, ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ جو ہے تو وہ ڈیمونسٹریشن تو ہو جاتی ہے نا اپنی جگہ کے, ٹھیک ہے کہ طالبان ڈیٹین نہیں کر سکیں, لیکن وہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی. پاکستان کی مثال میں بھی یہ ہوا کہ وہ شہر میں چھپے ہوئے تھے, فیسیلیٹیشن تو ہو رہی تھی, وہ سب کچھ اپنی جگہ, وہ سوال تو پیدا ہو گئے نا. تو اب اس میں یہ کہ یہ والی بات ضروری ہوتی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ افغانستان میں ایک پروسیس چلتا رہا ہے کہ فورس کی اپلیکیشن ہو چکی ہوئی ہے, نیٹو نے پورا کیا. اچھا, وہ جس سٹیج تک کامیاب ہوا نہیں ہوا وہ سب کو پتا ہے, اس کے اپنے عوامل ہیں. لیکن اب اس سے آگے کیا کیا جانا ہے, وہی چیز ریپیٹ کر کر کے, اچھا اس میں اب وہ ہوگا, اس میں بلیم گیم, پھر کس نے کیا
بلیم گیم. وہ تو خیر آ گیا, دونوں طرف سے آ گئی, کہا بھی گیا کہ اس میں پاکستان کے ادارے ملوث ہیں, پاکستان نے اس کو ڈیفینڈ کیا, ریجیکٹ کیا اس تنقید کو. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, آپ کے خیال میں کیا یہ جو قندوز کے اوپر کچھ گھنٹوں کے لیے ہی اگر کنٹرول تھا یا دوبارہ اس کو ریکیپچر کرنا تھا طالبان کی جانب سے, اس سے ملا اختر منصور جو کہ طالبان کے نئے قائد ہیں, ان کو مدد مل سکتی ہے صف بندی میں؟
اکثر یہ رائے ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی پہلی بہت بڑی کامیابی ہے, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو مسلط کرنے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے یہ ایک مختلف قسم کے ان کے جو حمایتی کہہ لیں یا سمپتھائزرز ہیں, وہ ایک سنگ میل اس کو قرار دے رہے ہیں.
صحیح.
تو میرا خیال میں یہ ڈیفینیٹلی ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو مستحکم کرے گی. میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا, جیسے یہ کہا جا رہا تھا پہلی ڈسکشن میں, بہت اچھے سوال اٹھائے گئے کہ طالبان یہ کیوں کر رہے ہیں. اب میرا خیال میں کہ طالبان کا مقصد صرف جو ہے, جس کو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ایک انسرجنسی ہے, تو तो इंसर्जेंसी एक इस किस्म की जंग है जिसमें हर वक्त कब्जा करना मकसद नहीं होता। बाद ये कब्जा उस वक्त किसी इलाके पे, किसी डिस्ट्रिक्ट पे, किसी मुल्क पे जो इंसर्जेंसी करने वाले हैं वो कब्जा उस वक्त करते हैं जब उन्हें ये यकीन हो जाए कि वो इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकते, उस कब्जे को कायम नहीं कर सकते, तो उनका दूसरा इंसर्जेंसी में बड़ा मकसद होता है कि जितना नुकसान पहुंचा सकते हो, जितने आदमी मार सकते हो, जितना डैमेज कर सकते हो, वो करके तो भाग जाओ, ताकि एक डिस्टेबलाइज सिचुएशन हो जाए जिसमें जो अपोजिट फोर्सेज हैं उनका ठहरना, उनका वहां पे कायम रहना जो है वो नामुमकिन हो जाए। तो मेरा ख्याल में जो ये जो अफगान मुजाहिदीन है इस इलाके को एक पूरी तरीके से आप कह लें कि फतह करने के बाद फौरी तौर पर निकल गए हैं, ये यकीनन उनके सामने ये बात होगी कि उनके पास ना तो इतनी कुव्वत है ना उनके पास इतने हथियार हैं कि वो इसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नेटो की और यूनाइटेड स्टेट की जो फोर्सेज हैं वो रेगुलर फोर्सेज हैं, उनके साथ रेगुलर वॉरफेयर जो है ये इंसर्जेंट्स के बस की बात नहीं है। इसलिए मेरा हाल मुनासिब उन्होंने यही समझा कि भाई इस ऑपरेशन को किया जाए और जितना जल्दी यहाँ से भाग सकते
हैं हिट एंड रन और बस एक चैलेंज क्रिएट करना। लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ऑलमोस्ट एक जनरेशन जो है उसका जो एक टेन्योर होता है वो दरमियान में से गुजर चुका है तकरीबन 15 साल, तो तालिबान के पास क्या ये हमला रिफ्लेक्ट करता है कि अब भी एक फ्लो जो है रिसोर्सेज का या उनको जो फ्यूल मिलता है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर या बाकी रिसोर्सेज वो चेन जो है वो मौजूद है अपनी जगह पे, बरकरार है उनके पास?
जी बिल्कुल बरकरार है, जाहिर है वो फ्यूल जो है या हथियार जो है या रसद है जो उनके लॉजिस्टिक्स है वो आसमान से तो नहीं आ रहे ना,
सही,
वो किसी जगह से आ रहे हैं ना, तो जहाँ पे भी उनकी ट्रस्टेड सप्लाईज हैं या सेंचुरीज हैं ये चीजें वहां से आ रही हैं, इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं हो, ये होना चाहिए कि खा उसको कोई सेंचुरीज या हमसाया ममालक उसको डिनाई करें या माने या ना माने वो एक अलग बात है,
सही।
लेकिन एक चीज जो सामने आई है उस चीज को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में काफी जो एनालिस्ट हैं वो जब से ये विदड्रॉल का मंसूबा बना था और ये विदड्रॉल मुकम्मल हुई और उनकी ये राय थी कि जो अफगान फोर्सेज, अफगान नेशनल फोर्सेज नेटो की तरफ से या यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से तैयार की जा रही हैं और उनकी जो कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट कर की जा रही है कि वो अमेरिकन फोर्सेज और नेटो फोर्सेज के जाने के बाद अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन और किस्म के इंसर्जेंट के खिलाफ वो अपना जो है इस्तकाम मुस्तकम रख सकेंगे, वो उनकी उनको डिफीट नहीं होगी, वो बड़ी कामयाब सक्सेसफुल आर्म फोर्सेज होंगी। इस पे बाद पाकिस्तानी इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम इसके बारे में स्केप्टिक थे कि इतनी जल्दी एक दुनिया की आला तीन फोर्सेज में तैयार करना आर्म फोर्सेज मुमकिन नहीं है,
ठीक है, और दूसरी जानब एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड गोरिला फोर्स हम कह सकते हैं कि मौजूद है।
जी बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड भी और बेटर हार्डन,
जी बेटर हार्डन,
1979 से वो लड़ रहे हैं,
सही,
और जिस किस्म की वो जंग लड़ रहे हैं उसमें वो उनका 20 साल का तजुर्बा है,
सही। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात, अभी आरिफ अंसार साहब एक हवाला दे रहे थे पिशावर पे बड़ाबीर में जो हालिया हमला हुआ, तो उसमें तो अगर दूसरी तरफ एक 70 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली फौज हो जिसको दुनिया की बेहतरीन फौजों में शुमार किया जाता है, तो ये जो गोरिला अटैक्स हैं वो तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं और फौज को जो रिस्पॉन्ड करने में टाइम चाहिए होता है वो उस टाइम को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं ये गोरिला फोर्सेज, तो इस सूरत में क्या ये बहुत अर्ली नहीं होगा उस पर कोई जजमेंट देना कि अफगान फोर्सेज की इस वक्त इस्तेदाद कार क्या है?
नहीं, मैं कोई कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि एक इनिशियल किस्म की ऑपरेशन है जिससे एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगान फोर्सेज इस काबिल नहीं है
exactly.
कि अफगानिस्तान में अमल कायम नहीं कर सकती, लेकिन इनिशियल जो उन्हें सेट बैक पहुंचा है उससे एक इंटरप्रिटेशन ये भी की जा रही है कि जो उनके बारे में जितनी प्रोजेक्शन की जा रही थी वो सारी की सारी, हो सकता है बहुत सारी प्रोजेक्शन सही हो लेकिन वो सारी की सारी सही नहीं है।
Exactly.
मैं आपसे बिल्कुल आप ये इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मेरा नुक्ता नजर भी यही है।
मैं समझ गया बिल्कुल कि आप, मैं बिल्कुल जजमेंट का शायद लफ्ज मुनासिब नहीं था, आप जजमेंट नहीं दे रहे, आप बुनियादी तौर पे एक एनालिसिस था कि खदशात थे इस तरह के कि शायद वो उतनी ताकत के साथ बिल्कुल उनको रिजिस्ट ना कर सके। आरिफ अंसार साहब, अगरचे मेरा अभी इशू तो दूसरा था लेकिन बात आ गई अफगान फोर्सेज के ऊपर, उनकी सलाहियत, उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों के ऊपर, इस रेफरेंस में बताइएगा, हमने आपसे निजी निशस्तों में भी ये सवाल उठाया है कि अफगान फोर्सेस पे जितना इन्वेस्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ टाइम भी और मनी भी और जितनी उनको ट्रेनिंग दी गई है उसके बाद کتنی توقعات ان سے رکھنی چاہیے ہیں افغان طالبان کی کہنا چاہیے کہ فورس کو سامنے رکھتے ہوئے؟
اسد صاحب میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس ٹاپک پہ, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی جو ہے وہ تو ابھی دنیا کی ہر فوج کو اس میں ایک چیلنج بنا ہوا ہے کہ یہ جو اربن وارفیئر ٹائپ انسرجنسی ایسیمیٹرک وارفیئر یہ سارے جو ٹاپکس ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا تو امریکہ کے لیے نیٹو کے لیے خود پرابلم رہا اور وہ کنٹینیوس ایک لرننگ پروسیس چل رہا ہے. کیونکہ یہ کنونشنل وارز تو ہیں نہیں کہ کوئی فوج آ رہی ہے بارڈر کے کراس ٹینکس لے کے اور اس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, یہ تو بالکل اربن سیٹنگز میں ہے. جس طرح آپ نے بات کی, ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے, وہ ہو جاتا ہے, پھر اس کو رسپونڈ کس طریقے سے کیا جائے. تو یہ جو نیا جو میتھڈ آف وار جو ابھی مڈل ایسٹ میں اور یہ سارا جگہ ایک ہی قسم کا چیلنج چل رہا ہے, تو اس میں میرا خیال یہ انفیئر ہوگا کہ ان کو افغان سیکورٹی فورسز کو اس حد تک بلیم کر دیا جائے, کیونکہ وہ تو ابھی ایمرج ہو رہے ہیں اور ان کا بھی کانفیڈینس اور سب کچھ اتنا جب اوپنلی کریٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے تو اور بھی کانفیڈینس کم ہوتا ہے, پھر پرپز اور کریڈیبلٹی اس کے بھی ایشوز چلتے رہتے ہیں کہ جو اٹھائے جاتے رہتے ہیں اور ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ کس حد تک ہے, اس میں سارے ایشوز شامل ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ آبویسلی موجود ہوں گے.
صحیح عارف صاحب, پچھلا جو ہمارا سوال تھا کہ ایک جنریشن کے فاصلے کے باوجود طالبان کا انٹیکٹ ہونا, ان کے کمیونیکیشن کے چینلز کا بظاہر اپنی جگہ پہ موجود ہونا, یہ کتنا بڑا شاک ہے یا کتنا بڑا آپ یہ کہنا چاہیے کہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے کوئلیشن فورسز کی پاور کو سامنے رکھتے ہوئے, بتائیے.
اور اس میں یہ والا اسپیکٹ ہے جو میں پوائنٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا لوکل سپورٹ کچھ ہے وہاں تو وہ ایگزسٹ کر سک رہے ہیں, اور یہ انسرجنسی ٹھیک ہے ہم ان کو نام تو مختلف قسم کے دے دیتے ہیں, لیکن وہ جو کہ یہ ایک چیلنج اس چیز کا ہے کہ وہ لوکل سپورٹ ان کو ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی کاروائیاں کر سکتے ہیں, اور اس میں پھر حکومتوں کی لیجیٹیمیسی اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہیں. میں صرف افغانستان کو اس میں نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ تو اسی طرح پرابلم ہوا ہے مڈل ایسٹ میں بھی کہ گورنمنٹس ایگزسٹ کس لیے کرتی ہیں, کہ وہ سیکیورٹی اپرچونیٹی اور یہ جب سروسز فراہم کرتی ہیں تو پھر کریڈیبلٹی ارن کرتی ہیں. تو افغانستان میں تو اس طرح کا بھی میرا خیال معاملہ بہت ہی دور ہے, تو جب وہ کریڈیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر وہ مسئلے بنتے ہیں مختلف قسم کے.
صحیح, یہ اس میں ایشوز رہتے ہیں. اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک سوال دونوں اپنے پینلسٹ سے پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, اس حملے کو اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ اس ریجن کے اندر جو دیگر ممالک ہیں ان میں پاکستان بھی ہے, اس میں رشیا اور چائنا بھی ہیں اور ایران بھی ہے خاص طور پہ, جن کے ٹیررزم کے حوالے سے اپنے کنسرن ہیں اور جو ہمیں کافی حد تک وہ امریکہ کے اس اتحاد کا بھی حصہ بنتے ہوئے نظر آئے ہیں جو پیس نیگوسیشنز کے اندر طالبان کو انگیج کر رہا تھا, تو ان کے خدشات کتنے بڑھیں گے یا ان کے اندر جو سکیپٹیسزم موجود ہے اس کو کتنی ہوا ملتی ہے طالبان کی اس انسرجنسی سے؟
دیکھیے جی, اس میں میں کہوں گا کہ اس میں جو مختلف ممالک ہیں ان میں کوئی تھوڑی بہت ڈویژنز پائی جاتی ہیں, مثلا ایران, رشیا اور اس افیلیشن میں جو لوگ جو ملک شامل ہیں ان کی طرف سے تو وہی ایک ٹریڈیشنل ویو جو آ رہا ہے کہ یہ ایک ٹیررزم کی کنٹینیویشن ہے اور اس کے ہر طریقے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان کا یہ موقف نہیں ہے, پاکستان شروع سے یہ کہتا آ رہا ہے, اور میں اپنا ویو نہیں دے رہا, میں پہلے پاکستان کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں.
جی جی پلیز.
پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ افغان مجاہدین جو ہیں وہ افغانستان میں جو بھی صورتحال ہے اس کا ایک حصہ ہے, اور جب تک آپ ان کو ایک حصہ نہیں مانتے, ان سے آپ کسی قسم کی کوئی نیگوشیشن نہیں کرتے, تو افغانستان میں امن, پائیدار امن قائم کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. آپ کہہ لیے کہ وہ بے شک ان کی جو بھی لیجیٹیمیسی پہ کوشچن مارک ہے, لیکن ڈیفیکٹو وہ ایک قسم کی ریالٹی ہیں, موجود ہیں, اور وہ کبھی بھی کسی وقت میں مکمل طور پہ ان کو ختم نہیں کیا گیا. تو وہ ایک فورس ہیں, وہ ایک فورس ہیں جو افغانستان میں کسی طرح سے موجود ہیں. اور میں اپنے کلیگ کی اس بات سے بھی 100% اتفاق کروں گا کہ انسرجنسی میں یا گوریلا وارفیئر میں یا لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں جو بھی کہہ لیں, جب تک ایک خاص مخصوص قسم کی عوامی حمایت حاصل نہ ہو, ایسی انسرجنسی خود بہت ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب افغان مجاہدین جو ہیں وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پاپولر ہیں, لیکن ان کو وہاں کی کچھ نہ کچھ لوگوں کی حمایت حاصل ہے, جس کی وجہ سے وہ اس قسم کا وارفیئر جو اس کو وہ کنٹینیوشن کر رہے ہیں. تو یہ ایک میں کہوں گا کہ ان ملکوں میں چائنا کی طرف سے جو بات ہے, چائنا نے نہ تو کھل کے ٹیررزم کے کانٹیکٹس میں افغان مجاہدین کی کاروائیوں کی اتنی جس طرح سے जो एक रशिया करता आ रहा है या जैसे यूनाइटेड स्टेट्स करता आ रहा है या जिस तरह दूसरी तरफ पाकिस्तान का आर्गुमेंट है, चाइना ने एक मिडिल ग्राउंड जो है ना बगैर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी स्टेटमेंट दिए हुए एक मिडिल ग्राउंड इख्तियार की हुई है। वो इनकी हिमायत भी नहीं करते, इनको इलिजिटिमेट भी समझते हैं, लेकिन इस तरीके से वो उनके खिलाफ बयान नहीं देते जिस तरह रशिया यूनाइटेड स्टेट या बाकी ईरान जैसे मुल्क जो देते हैं। तो मैं यही इसको कंक्लूड करूंगा कि इसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, रीजन के मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ राय पाई जाती है।
सही, आरिफ अंसार साहब समअप इसको कीजिएगा। पहला तो यही था कि जो रीजनल पावर्स हैं, रीजनल मुल्क हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी इसमें तहफ़ुज़ात क्या हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले इसको आप समअप कीजिएगा। आपने भी कहा और चीमा साहब भी कहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा या कम जो भी हिमायत मौजूद है तालिबान की अवामी सतह पे, उसको जंगी हथियार बनाने के बजाय क्या वो सियासी हथियार बना सकते हैं, पोलिटिकल वेपन बना सकते हैं पोलिटिकल इंगेजमेंट के लिए, या बनाना चाहिए उन्हें?
सबसे मेरा ख्याल अहम बात यही है कि ये इसको अब अगर जो 13-14 साल की जंग हुई है वो अब किस स्टेज पे है उसकी रियलिस्टिक असेसमेंट, और फिर उस असेसमेंट से आगे जाने की जरूरत है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पीछे जाने से तो वही नतीजा निकलेगा और शायद उससे ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि अब तो दाइश का एलिमेंट भी आ गया है जो बजाहिर किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, अपने एजेंडे हैं उनके, और वो अफगानिस्तान के लिए भी बड़ी खतरनाक होगा, दूसरी स्टेज में पाकिस्तान के लिए, और तीसरी स्टेज में हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा खतरनाक होगा। तो हिंदुस्तान को भी मेरा ख्याल इस चीज की रियलाइजेशन की जरूरत है कि अभी तो दूर है लेकिन दाइश का फैक्टर बहुत खतरनाक है, लेकिन इससे अब आगे जाने के लिए इसको अमनियत का जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है वो अब किस तरीके से आगे जाना चाहिए वो तो फिर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं अफगान स्टेक होल्डर उन्होंने डिसाइड करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पीछे जाके वही फार्मूला दोबारा अप्लाई करना और वही रीजंस और स्टेटमेंट्स दे के हम मुस्तकबिल में नहीं जा पाएंगे।
बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी, लेकिन हम आपसे इजाज़त नहीं ले रहे, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे शाम की सूरत हाल पे।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे, दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग, आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी,
आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहांरंग, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे शाम की सूरतयाल पे, जहां पे रूस ने कुछ दिनों से फिजाई कार्रवाइयां जारी कर रखी हैं, शुरू कर रखी हैं, और रूस का मौकफ यह है कि वो यहां पे इस्लामिक स्टेट या दाइश उसके ठिकानों को अपना हदफ बना रहा है, लेकिन मगरबी दुनिया के तहफ़ुज़ात इस पर बढ़ते आ रही हैं। आज बरतानिया के फॉरन मिनिस्टर ने अपने एक बयान में कहा कि रूस ने जितने हमले किए हैं, जो हमारी असेसमेंट है, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, उसमें सिर्फ 5% हमलों में इस्लामिक स्टेट या दाइश उनको टारगेट किया गया, जबकि बाकी तमाम जो हमले थे वो सदर बशार अल-असद के जो सियासी मुखालिफीन हैं उनमें उन्हें हदफ बनाया गया है। इस पे मुबसरीन ये कह रहे हैं और यूरोपीय रहनुमा ये तासर दे रही हैं कि रूस और मगरब के दरमियान शाम के मामले पे फासले या खलीज जो पहले से मौजूद है वो मज़ीद वसी हो रहा है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ी अजीब सूरत हाल है जिसमें दाइश के खिलाफ बज़ाहिर दुनिया के दो दो इतिहाद बनते हुए नज़र आ रही हैं। एक इतिहाद में अमरीका है, उसकी क़यादत में नेटो है, उसके अंदर यूरोपीय ममालिक उसका हिस्सा हैं, अरब ममालिक के साथ हैं, जबकि दूसरे इत्तेहाद में रूस, शाम और ईरान वो जो हैं वो मिलकर कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रही हैं। क्या लेजिटिमेसी होगी और कितना इम्कान है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाए, एनालिसिस हम लेंगे। डॉक्टर जफर इकबाल चीमा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक वीएन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, वो हमारे साथ हैं, और आरिफ अंसार साहब चीफ एनालिस्ट पॉलिटिक्स, यूएस बेस्ड एनालिस्ट हैं। दोनों अपने मेहमानों को हम इस सेगमेंट में भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर जफर इकबाल चीमा साहब, रशिया रोल इन सीरिया, और
आसिफ साहब मेरी तो राय ये है कि ये खलीज जो है ये नए सिरे से कोई पैदा नहीं हुई, ये खलीज जो है जब से सीरिया का क्राइसिस हुआ है ये पहले दिन से मौजूद है। रशिया ने जो असद हुकूमत की हमायत की है वो पहले दिन से की है, उन्होंने कभी उसकी हमायत मुकम्मल तौर पे तर्क नहीं की। आपको याद है जब शाम में केमिकल वेपन्स हथियार इस्तेमाल होने के इल्जाम लगे थे, उस वक्त भी रशिया की पोजीशन थी कि ये केमिकल वेपन्स जो है हथियार जो है ये असद रजीम ने इस्तेमाल नहीं किए, ये उनके अपोजिट फोर्सेज ऑपरेट कर रही हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन की और यूनाइटेड स्टेट की फाइंडिंग जो थी वो उसके बिल्कुल अपोजिट थी। तो ये एक हमारे अफकोर्स मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूँ, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी सही है कि ये इख्तलाफात जो है ये फैलते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं और इसमें रूस के साथ ईरान भी शामिल है, शाम तो पहले ही शामिल है और मैं कहूँगा कि इसके साथ हिजबुल्ला भी शामिल है। तो ये एक कह रहे हैं कि चार कुफ्ते हैं जो असद हुकूमत की हमायत में ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं। रूस की वजूहात जो हैं वो ना सिर्फ मिडल ईस्ट में या शाम में अपना एक किस्म का एक फुट होल्ड कायम करना है बल्कि रूस के और भी बाज आप कह लें कि मकासद हैं जिनको वो ये हासिल करना चाहते हैं। जब से यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ है और जैसे वेस्ट के और यूनाइटेड स्टेट्स के रूस के साथ इख्तलाफात पैदा हुए हैं तो मेरे ख्याल पुतिन ये भी साबित करना चाहते हैं कि रूस अभी भी एक बड़ी ताकत है और रूस को उसका ये रोल या उसका जो स्टेटस है ये डिनाई नहीं किया जा सकता। उससे वो पुतिन साहब साबित, मेरे ख्याल में पुतिन साबित ये करना चाहते हैं कि रूस एक बड़ी ताकत है और उसका सबूत यह है कि रूस से हजारों मील दूर एक शाम जैसे मुल्क में जाके वो पावर प्रोजेक्शन कर सकते हैं जो मिलिट्री पावर की प्रोजेक्शन है। और ये आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अगर दुनिया में कोई और मुल्क है जो ये डेमोंस्ट्रेट करना चाहता है या लिमिटेड महदूद तरीके से कर रहा है तो रूस ये एक एफर्ट कर रहा है। अभी तक चीन ने कोई इस किस्म की कोई डेमोंस्ट्रेशन नहीं की कि अपने मुल्क से हजारों मील दूर जाके वो मिलिट्री पावर को प्रोजेक्ट करें।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या इंटरनेशनली ये जरूरी होता है कि किसी बड़े फोरम से जैसे नेटो है, यूनाइटेड नेशंस हैं, वहां से एक सर्टिफिकेशन या जो हिमायत है वो जरूरी हो, या उस मुल्क की जो हुकूमत है उसकी इमा पे कोई भी उसका दोस्त मुल्क इस तरह के फिजाई हमले कर सकता है?
पर उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। एक तो इंटरनेशनल इमेज होता है, वो इंटरनेशनल इमेज कोई खास अदारा अता नहीं करता, यूनाइटेड नेशन या फिर और नेटो की तरह से वो एक लकब कह लीजिए वो दिया नहीं जाता। जब आप एक मुल्क पावर की प्रोजेक्शन करता है तो वो अपना एक इमेज है उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। दूसरी बात यह है कि जो डोमेस्टिक पब्लिक सपोर्ट होती है उसको भी किसी तरीके से इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो की जाती हैं। और तीसरा मकसद ये भी होगा, रूस दुनिया को ये भी साथ देना चाहता होगा कि वो मिडल ईस्ट से बिल्कुल फारग नहीं हो गए और निकल नहीं गए, उनका एक किस्म का एक फुट होल्ड या एक मुल्क में उनकी मौजूदगी है और वो उसको कायम भी रखेंगे और उनको जो मौके मिले तो उसको आगे भी वो उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो जनरली स्पीकिंग आप कह लीजिए कि ये तीन चार मकासद अगर सामने रखे जाएं तो जो बड़ी ताकतें हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ उनके लिए एक किस्म का इम्पेरेटिव जो है वो बन जाती हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत बड़ी डोमिनेंस प्रेजेंस है मिडल ईस्ट में और मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त जो बयान आ रहे हैं उनसे ये पता चला है कि उनका बड़ा डीप कंसर्न है कि जो पुतिन ये जो इस किस्म की ऑपरेशन कर रहे हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं देर पर अमन के लिए, इस्तेमाल के लिए मिडल ईस्ट में अच्छे नहीं होंगे। और आज ही सेक्रेटरी कैरी का भी ये बयान आया है और प्रेजिडेंट ओबामा ने भी ये बयान दिया है कल कि ये इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो इन चीजों को सामने रखते हुए ये देखना पड़ता है कि रूस जो है एक बड़ी ताकत की हैसियत से ये कार्रवाई कर रहा है।
जी आरिफन सर, सब ये बताइएगा कि रूस कैसे क्या मकासद हो सकते हैं कि बज़ाहिर वो सदर बशर अल असद को बचाने के लिए, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या उनकी सियासत को बचाने के लिए अपने मिलिट्री पावर्स तक जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पिछले कई दहाइयों में गालबन पहली बार इतने फासले पे जाके उसने अपने मसल्स जो हैं वो शो किए हैं।
जी इसमें ये मेरा इदारा पॉलिटेक जैसे भी आपको पता भी है कि हम काफी अरसे से इस चीज को क्लोजली देख रहे हैं और ये हमारे फोरकास्ट में जो था 2014-15 के लिए उसमें हमारी एक पैटर्न था जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कैंपेन है वो मिक्स होती जा रही है ग्लोबल पावर टसल्स जो है, बैलेंस ऑफ पावर की जो इश्यूज हैं उसके साथ वो इंटरमिक्स होती जा रही है। अब वो होते होते सीरिया में हम जो देख रहे हैं कि वो इस चीज का एक क्लियर फिनोमिनन आउटकम अब उभर के सामने आ रहा है कि ठीक है सामने तो वॉर ऑन टेरर भी है लेकिन उसकी बीची सतह पे वो बैलेंस ऑफ पावर की इश्यूज अपनी जगह मौजूद हैं। अब वो इश्यू इस हद तक कॉम्प्लिकेट हुआ है रीजन में कि हर एक जो है अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो ग्लोबल जो अलायंस है ग्लोबल जो एनिमी है आईएस या अलकायदा उसके खिलाफ भी जंग कर रहा है। सऊदी अरब जो है वो यमन में जाता है हुतियों के खिलाफ लड़ाई करता है, तुर्की जो है वो कुर्द के खिलाफ बमबारी करता है, रूस कहता है कि हम तो भी आईएस के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन साथ में वो अब रेबल्स या मॉडरेट फ्री सीरियन आर्मी जो है उसके खिलाफ भी करता है। तो वो एक जो अब ये फिनोमिनन उभर रहा है उसमें ये लगता है कि हर एक अपने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रजामंद हो गया और उसके लिए प्यार है कि मिलिट्री पावर को यूज किया जाए। तो मतलब ये तो क्या सिर्फ रूस नहीं है, हमने अभी रिसेंटली देखा कि सऊदी अरब ने भी किया, तुर्की ने भी किया और लोग भी अभी
सऊदी अरब ने यमन में किया। तो क्या जैसे फिर कोट किया है प्रेसिडेंट बराक ओबामा को डॉक्टर साहब ने, तो फिर क्या ये रेसिपी ऑफ डिस्ट्रक्शन है, डिजास्टर है?
अब ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि आलमी लेवल पे भी यूएन का भी अभी इजलास हुआ और सैडली ये चीज सामने नहीं आई, शायद पोप का दौरा यहाँ पे वो उन्होंने शायद इस चीज को ज्यादा अच्छे एड्रेस किया कि ह्यूमैनिटी का क्या इश्यू है अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट तक महदूद रहे हैं। और सदर ओबामा की भी जो यूएन में तकरीर थी उन्होंने भी इसके ऊपर एड्रेस जरूर किया कि जो ह्यूमैनिटी है इंसानियत किस तरफ जा रही है, क्लाइमेट चेंज के जो ताल्लुक हैं कि अगर हम इन्हीं इश्यूज तक महदूद रहेंगे तो एक दूसरे को तबाह कर देगा इंसान। तो यूएन के इदारे और जो प्लेटफॉर्म थे वो तो इसीलिए थे कि हम इसको सोच सकें अब कि जो वॉर ऑन टेरर है कि फिर वही कि इसके जेन्युइन रीजन क्या थे, अब किस स्टेज पे है और इससे अगली स्टेज जो है उसको उसके खतार जो रिस्क हैं उसको किस तरीके से जाहिर किए जाए, वरना तो ये अब मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो तो बिल्कुल एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं जो बिल्कुल एक बहुत ही सेंसिटिव सी लाइन है जो सीरिया में अब वो निकली है, जो मगरब का अलायंस है और रूस का जो अलायंस है और इसमें लगता है कि वही है कि शायद पावर प्ले जो हो रहा है वो तो ये है जो अजाइन की आपने बात की,
ठीक है,
असाद के ऊपर जो है कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा। अच्छा लेकिन इसमें मैं एक फाइनल पॉइंट ये कर दूं कि आलमी ताकतें जो हैं या कम से कम जो चाहती हैं कि वो आलमी ताकतें हों अगर वॉर ऑन टेरर फैलते फैलते उनके की एलायंस को भी लपेट में ले आए जिस तरह की सीरिया में आप कह सकते हैं किसी हद तक, तो क्या उनको काबिले कबूल होगा कि वो हुकूमतें गिर जाएं? रूस ये जाहिर कर रहा है कि नहीं वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे वहां पे।
सही, लेकिन इसको सम अप कीजिएगा इन कमेंट्स के साथ कि दो ग्रुप दो इत्तेहाद या दो ताकतें बजाय अगर वो फौजी ताकत इस्तेमाल भी कर रही हैं, मसल शो भी कर रही हैं, तो क्या वो एक दूसरे को नोटिस करा रही हैं या इसमें वाकईतन आईएस के लिए इस्लामिक स्टेट या दाइश के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी या उसको स्पेस मिल जाएगी? इस्लामिक स्टेट के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं सामने?
इसको इसलिए इसको समझने के लिए हमने जो एक फॉर्मूला था वो ये था कि मेरा ख्याल नॉर्थ स्टेट एक्टर्स को जो है ना ये एक्सट्रीमिस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा मुख्तलिफ कैटेगरीज में, एक तो आईएस एंड अलकायदा टाइप जो जेन्युइन हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट हैं जो बाहर किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं है या सुनते भी किसी की नहीं, दूसरे लेवल पे जो अब हैं वो हिजबुल्ला टाइप ग्रुप्स हैं जो कि ईरान के इन्फ्लुएंस में है और उस पे अमल करते हैं तो वो स्टेट इन्फ्लुएंस के अंडर हैं किसी ना किसी हद तक और उसमें काबू में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तीसरे लेवल पे नेशनलिस्ट किस्म के ग्रुप आ गए हैं जिसमें कुर्द और मुख्तलिफ उस तरह के अजायम रखने वाले हैं। तो मेरा ख्याल अगर हम इस तरह से अलग अलग रख के देखे जाएं फर्क कर सकें और ये ना कहें कि एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ ही सब लड़ रहे हैं तो शायद हमें जरा बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाए कि अब ये किस रुख पे जा रही है, वरना अगर हम हर एक जो है वो सबको लंप कर दे कि हम सभी एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके अंदर सभी लपेट में आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका आरिफ अंसार साहब, चीफ एनालिस्ट विद पॉलिटेक, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर जफर इकबाल चीमा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक वीजन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके भी हम मशकूर हैं। सामिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे, खासतौर पर कराची की सियासत पर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए क्या चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और दूसरी तरफ रियासत का नैरेटिव क्या है, एक ब्रेक के बाद।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नईम।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम है, हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हमने बात करनी है कराची की सूरत हाल पे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसके लिए पैदा होने वाले चैलेंजेस पे, लेकिन इसका एक और जाविया भी है, वो है इजहार राय की आज़ादी का। उस रेफरेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे आसमा जहांगीर साहब से, मुमताज़ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप जानते हैं, फार्मर हेड रह चुकी हैं इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसके अलावा बार में बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबरा अल्ताफ हुसैन पे पाकिस्तान की एक अदालत की तरफ से, लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से पाबंदी आयद की गई कि उनकी तकारीर, उनके खिताब और उनके पैगाम या उनकी तस्वीर वो नशर ना की जाएँ पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर, तो वो उनको डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ी हैं, उनको बज़ात खुद बहुत क्रिटिसिज्म का सामना है। मैं अगर ज़ाती तौर पर आसमा जहांगीर साहबा के बारे में अगर ये कह सकूँ, जितना हम उन्हें जानते हैं, वो यकीनन कोई सिंपथाइजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नहीं होंगी या उनकी पॉलिसीज की नहीं होंगी, लेकिन यहाँ वो प्योरली एक जो इजहार राय की आज़ादी का मामला है और जिस तरीके से उसको रोकने की कोशिश की गई है, यहाँ पे उनका प्रिंसिपल स्टैंड होगा। वो अल्ताफ हुसैन साहब को या उनके इस राइट को डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये केस लिया है, लेकिन उनको अपनी ही कम्यूनिटी, अपनी बिरादरी, अपने लॉयर्स की तरफ से खासी मुश्किल और चैलेंजेस का सामना है। यहाँ तक के मुतालबात किए जा रहे हैं कि उनका लाइसेंस जो है मनसूख कर दिया जाना चाहिए। लॉयर्स का नरेटिव या इसमें नज़र यह है, उनका ख्याल यह है कि चूंकि कुछ बरस पहले जब कराची के अंदर सदर मुशर्रफ के दौर में लॉयर्स को विक्टिमाइज किया गया, तो उसमें चूंकि पार्टी की फिलासफी या सोच कार फरमाती, तो इसलिए उनका डिफेंस नहीं होना चाहिए। पहले हम इस एंगल पर बात कर लेंगे, लेकिन बाद में हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे, हम कराची की ओवरऑल सियासत और पार्टी के लिए मुश्किल पर बात करेंगे, लेकिन पहले आसमा जहांगीर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। आसमा साहबा, आप थोड़ा सा बयान करेंगी, आपके लिए ये केस कितना मुश्किल साबित हो रहा है? जी हाँ,
पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे जरा परेशानी नहीं है,
सही,
इसलिए क्योंकि वकला बरादरी ने कभी मेरी मुखालफत नहीं की,
सही,
ना किसी बार के ओहदेदार ने की, ना किसी बार काउंसिल ने की, ना किसी बार एसोसिएशन ने की,
सही।
ये चंद मुट्ठी भर वकील हैं और उनकी कई लोग ऐसे हैं उनमें से जो के जिसे कहते हैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट है,
जी,
और कई लोग ऐसे हैं जिनको मोटिवेट किया जाता है ऐसी पिटिशनें करने का, वो हम यहाँ रहते हैं हमें पता है,
सही।
बाकी ये है कि इस तरीके का ऑर्डर जो है कोई भी अदालत दे कि किसी का नाम ना आए, तस्वीर ना आए, एक्टिविटीज ना आए, बयान ना आए,
सही,
बगैर दूसरी पक्षी को सुने, तो मेरा ख्याल है ये हमारा हक बनता है कि हमारे तनाव का है MQM से भी और अल्ताफ हुसैन साहब से भी,
सही,
मगर ये उनका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका राइट है, और अगर मुझे अपने लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो मैं दूसरे का भी इस राइट को उसी तरह डिफेंड करूंगी,
सही।
दूसरी बात ये है कि हमारी अपनी बहुत सारी वकला बरादरी जो है ज्यादातर मास्वा ये चंद लोगों के
जी,
उनका ये ख्याल है, और बहुत सारे यहाँ पे बयान लीडरान ने दिए और एडिटोरियल भी आए
जी जी,
के डॉक्टर खालिद रानिया और मैंने बड़ा अच्छा किया ये केस लेके,
सही,
कि हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि पंजाब से उर्दू स्पीकिंग के लिए ये आवाजें उठती हैं कि वो ट्विटर,
सही जी,
तो हम ये समझते हैं कि ये चीज ऐसी बात ना होनी चाहिए। और बाकी ये है कि आप जो किसी वकील से और से पूछे जिस किस्म की रिट पिटिशनें दायर होती हैं और हुई हैं, इनकी तो पहले मेंटेनेबिलिटी पे बात होनी चाहिए थी, बगैर किसी को सुने आप इस तरह से ऑर्डर दे दें,
सही,
तो ये
कैसे है? ये कैसे हो गया आसमा साहबा, जैसे आप ये कह रही हैं कि ये तो बिल्कुल, हम तो लॉ के तालिब इल्म भी नहीं कह सकते खुद को, हम तो साफ़त के तालिब इल्म हैं, लेकिन बज़ाहिर इस तरह की पिटिशंस के ऊपर ख़ासतौर पे फिर ये फैसला आ जाना, जैसे आप ये कह रहे हैं कि उसकी तो मेंटेनेबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क आने चाहिए, तो वहाँ पे भी तो जो लोग बैठे हैं अदलिया के अंदर उनके सामने भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मायार होंगे, किस बुनियाद पर आपके ख्याल में ये फैसला दिया गया होगा?
देखिए ज़रूर होंगे, मैं तो सिर्फ अपने केस के बारे में कह सकती हूँ और जो हकीकत है मैं आपको वही बयान कर सकती हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी फैसला तो जजों ने ही करना है,
सही।
دوسری بات یہ ہے کہ جو ایٹموسفیئر کریٹ کیا جاتا ہے اور اگر یہ امپریشن ہو کسی بھی موکل کو, خاص طور پہ جہاں پہ ایتھنک سینسٹیوٹیز ہوں, کہ ایک دم پریشر میں آ کے جج صاحبان بھی اس طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے لوگوں کے رائٹس کو, تو یہ میرا خیال ہے پھر ایک بڑا ڈسکریجنگ فیکٹر ہوگا.
Exactly.
اور ان لوگوں کے لیے بڑا انکریجنگ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ سیلف رائٹس لوگ ہوتے ہیں اور سیلف اپوائنٹڈ کسٹوڈین ہوتے ہیں ان اس کے پیٹریوٹزم کے. حالانکہ یہ پٹیشنیں موٹیویٹڈ ہوتی ہیں, کہیں سے کروائی جاتی ہیں.
صحیح, بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا آسما جہانگیر صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین, اب ہم کراچی کی پالیٹکس اور متحدہ قومی موومنٹ, اس کے لیے بظاہر جو مشکلات نظر آ رہی ہیں اس پہ بات کریں گے. وسیم اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے مستعفی, یعنی استعفیٰ پیش کرنے والے, میں یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تک ان کا اسٹیٹس ممبر نیشنل اسمبلی ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انالیسس کے لیے ہما بکائی صاحبہ, پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل انالیسس, ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. لیکن سب سے پہلے وسیم اختر صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آسما جہانگیر صاحبہ کی آپ گفتگو سن رہے تھے, وہ تو اظہار رائے کی حوالے سے تھی اور بالکل انہوں نے انڈورس کیا آپ کے نقطۂ نظر کو, لیکن میں آپ تھوڑا پولیٹیکلی جاننا چاہتا ہوں. دو تین ایشوز ہیں, ایک تو یہاں تک کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ بھی کیس جو ہے وہ درج ہو گیا ہے, اور ٹیررزم یا پھر خاص طور پہ ٹیرر چارجز وہ آپ کے خلاف فائل کیے گئے ہیں, آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے؟
جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس دن سے کراچی کا ٹارگیٹ ایکشن شروع ہوا ہے, جتنی بھی بد امنی اس شہر میں آج بھی موجود ہے, جتنی قتل و غارت, ٹارگیٹ کلنگ, مسنگ پرسن اور مختلف جو کرائم ہو رہے ہیں اس شہر میں, وہ اپنی جگہ. مجھ پر ایف آئی آر کل کٹی
جی
دو تھانوں میں, اور جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے مجھ پہ ایف آئی آر نہیں کٹی ہے.
صحیح,
یہ ٹارگیٹ کلنگ ہو گئی اور بہت ساری جتنے کرائم ہو رہے ہیں, آپ ذرا میرا پوائنٹ لیجئے گا.
جی, میں سمجھ رہا ہوں.
اور کٹی ایف آئی آر تو میری مجھ پہ کہ میں نے ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے فیکٹس جو ہیں, جو فیکٹس ہیں جو چودھری نثار صاحب نے یہ کہا پرویز مشرف صاحب کے لیے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے, جو وہ پرائم منسٹر سے, اور پرویز مشرف صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دی جائے, میں الطاف حسین صاحب کو قتل کروا دوں گا وہاں. تو اس پہ میں نے فیکٹس کی ریکویسٹ کی کہ چودھری نثار صاحب سے چیف آرمی اسٹاف کو پوچھنا چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو پوچھنا چاہیے کیا وہ سچ بول رہے ہیں, اگر سچ بول رہے ہیں تو ہماری فوج کیا اس کام کے لیے ہے, اور اگر غلط بول رہے ہیں تو ان کا ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے. یہ بات کہنی تھی کہ میں وہاں ٹی وی اسٹیشن سے نکل کے جب گھر آیا ہوں تو پتا چلا کہ
آپ کے خلاف کیس کر رہے ہیں. اچھا وسیم صاحب, میں نے آپ کا وہ ٹاک شو بھی سنا تھا,
انٹیلیجنس ایجنسیز کا.
جی, میں نے آپ کا وہ ٹاک شو سنا تھا,
اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے.
جی, اب ذرا بڑی پکچر کی طرف آتے ہیں. عموماً جہاں سے معاملہ شروع ہوا, رینجرز کا آپریشن کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف, اور وہیں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور ریاست کے درمیان یا ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے گئے ہیں. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کا سب سے بڑا اعتراض یا تحفظات کیا ہیں؟ کیا ایسے عناصر کے خلاف آپریشن جن کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے لیکن ان کا نام آ رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ, وہ آپریشن اعتراض ہے, یا الطاف حسین صاحب کی جو تقاریر ہیں ان پہ پابندی, آپ کا بنیادی اس وقت مسئلہ کیا ہے؟
دیکھیے, پابندی تو کورٹ میں جا چکی ہے.
صحیح,
ہمیں پھر میں کہوں گا, بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ آج بھی ٹی وی پہ ایک جھوٹی خبر چلائی جا رہی ہے صرف ملائن کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو, کہ کچھ لوگ مارے گئے تھے, ایم پی ایس ہمارے جو شہید ہوئے ان کا قاتل پکڑا ہے اور وہ بھی ایم کیو ایم سے ہی تعلق رکھتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ, وہ جو ایم پی ایس ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل تین دفعہ پکڑے جا چکے ہیں, یہ ریکارڈ پہ ہے, یہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آ چکا ہے, اخباروں میں خبریں بھی موجود ہیں, جی آئی ٹی بھی موجود ہے, گورنمنٹ کی اپنی خبر بھی موجود ہے. اس کے بعد رینجر ذرائع سے یہ خبر چل رہی ہے کہ یہ جو قتل ہوئے تھے ایم پی ایس, یہ ایم کیو ایم کے ہی لوگوں نے مارے. تو یہ اتنا کنفیوژن کریٹ کر دیا. دیکھیں, یہ سولوشن نہیں ہے, ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت ہے.
میں سمجھ رہا ہوں آپ کا, یہ
چاہتے ہیں,
اس پہ بھی پہلے بالکل بات ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اور بھی جے آئی ٹی میں ان کا نام تھا. جی,
ہم چاہتے, देखिए हम चाहते हैं बैठ के सोल्यूशन निकाला जाए, ये टसल जो है, ये जो एक दूसरे पे दुश्मनी की हद तक जाया जा रहा है, हमारे लड़कों को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, आंखें निकल जा रही है, काट दिया, छीनी जा रही है, छीली जा रही है, खाले उतारी जा रही है आदमियों की टॉर्चर में, तो इससे निकल के हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे साथ बैठे हैं, जहाँ हमारी गलती है हम उसको ठीक करेंगे, जहाँ उनकी गलती है वो अपनी गलती ठीक करें।
तो वसीम साहब ये बताइए, वसीम साहब ये बताइए, क्या वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सियासी जमात की हैसियत से अपने साथ जुड़े हुए इस तासर को भी जायल नहीं कर सकी है कि क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ उसका ताल्लुक या नहीं है? क्या आप ये समझते हैं कि ये खामी मौजूद है या इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए या पार्टी अब रीशेप हो सकती है?
देखिए आपके नॉलेज में भी होगा, पूरे मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं हर जमात में इस किस्म का एलिमेंट चला जाता है, घुस जाता है, होता है मौजूद। ये पार्टी की का फर्ज बनता है कि अपनी जमात से इस किस्म के एलिमेंट को अलग करे।
सही,
ठीक है, ये सिर्फ एमपी नहीं है, ये हमें तासुर
तमाम सियासी जमातों के लिए, कराची में और पार्टियों को भी नाम है
पूरे मुल्क में। आपने पंजाब में देखा कितनी हवाई फायरिंग होती है, आपने पिंडी में जो वो जो पीटीआई वो जो ताहिरुल कादरी साहब के जो लोग मारे गए मॉडल टाउन में, वो देखा आपने, गुल्लू बट देखे आपने। तो खैर एमपी में भी जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे में भी गलत एलिमेंट आया होगा, है मौजूद, तो उसका तरीका है। हम नहीं बोल रहे कि हमारा अगर कोई गलत आदमी है, टारगेट किलर है खुदा ना खास्ता, तो हम उसको, हमें बताएं कौन है, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे अगर एविडेंस है उसके पास। देखिए हम चाहते हैं उसका ट्रीटमेंट एज पर लॉ हो, उसके मिसिंग पर्सन ना हो, वो थर्ड टॉर्चर ना हो, उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ना हो उसकी। अगर मेरे पार्टी के आदमी ने गलत काम किया, अदालत से सजा दिलवाए उसको, मैं कभी उसको
लेकिन नहीं, लेकिन टॉर्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इसमें साहब आपको इंडोर्स करते। सिर्फ एक सवाल और करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा रेंजर्स का या नुक्ता नजर या जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका ये कहना है कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो क्राइम है खासतौर पे जिसमें भत्ता शामिल है, जिसके अंदर टारगेट किलिंग है, वो बहुत डिक्लाइन कर चुका है, स्ट्रीट क्राइम अपनी जगह पे मौजूद है। और उनका ये भी कहना है कि ये किसी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, ये क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ है, वो जिसकी सफ़ों में भी शामिल होंगे वहाँ तक पहुँचा जाएगा। वसीम साहब ये बताइएगा, अब ये भी समझा जाता है कि जो कुछ लंदन में हो रहा है खासतौर पर वहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, अल्ताफ हुसैन साहब की जमानत की मुद्दत भी 5 अक्टूबर तक है, उसके बाद बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हैं मीडिया के ऊपर भी, बहुत ज्यादा क्या सराहियां हैं, उस रेफरेंस में आपकी पार्टी क्या चैलेंज महसूस कर रही है, क्या मुश्किलात महसूस कर रही है, क्या हीट, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो फ्रंट रनर थे इस वक्त वो हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे पार्टी को डिफेंड करते हुए।
देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी पहली वाली बात का जवाब दूंगा, अगर ये किसी एक सियासी जमात के खिलाफ नहीं हो रहा होता तो मुझ पे कल 2 FIRs नहीं कटती। मैं तो एक टीवी टॉक शो पे एक सियासी आदमी हूँ, एक बात कर रहा था, बात करने पे 2 FIRs काट दी गई, तो ये तो साफ जाहिर होता है, मिसाल मौजूद है कि एक सियासी जमात के खिलाफ हो रहा है। दूसरी बात आपने की थी हालात की, जब मैं होम मिनिस्टर था और मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, तो जब कराची के जो हालात थे वो इससे बहुत बेहतर थे, तो जो आज हैं, उस वक्त टारगेट किलिंग नहीं थी, आज टारगेट किलिंग मौजूद है, 26 साल से ये कराची में है। असला कहाँ से आता है, कराची में नहीं बनता, ये कटी पहाड़ी, मानसरा कॉलोनी, मंगो पीर, ये जितने तालिबान और बैंड आउटफिट जो लोग बसाए गए हैं, ये इनके सामने बसे, इनको रोका क्यों नहीं गया? कुंडे लगे हुए हैं, बिजलियां चोरी हो रही हैं, पानी चोरी हो रहा है, इनको कुछ नहीं कहा जाता, वहां निजामी अलग है, वहां तालिबान रूल करते हैं, ये कराची शहर की बात बता रहा हूं मैं, ये कैसे आ गए, कैसे ये इलाके बस गए, तो ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। कराची के हालात खराब करने में अगर आपको जिम्मेदारी दी गई थी, 26 साल हो गए आपको, आपको बजट मिलता है, आपने क्या, असला कैसे आ रहा है कराची के अंदर, जिम्मेदारी है क्या, असला फैक्ट्री तो नहीं है यहाँ, बॉर्डर क्रॉस करके असला आता है, तो बॉर्डर पे एमक्यूएम नहीं बैठी है, आपका फर्ज था कि कराची में अमन कायम करते जिसमें आप आज भी नाकाम हो।
ठीक है, लेकिन क्विकली पार्टी के लिए चैलेंजेस और पार्टी की लीडरशिप का बाजार अपनी जगह पे मौजूद ना होना,
आपका सवाल मेरे जहन में है, बिल्कुल आपका सवाल जहन में है, पार्टी के सामने चैलेंजेस हैं, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, हम फेस कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा اور ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ.
بہت شکریہ آپ کا وسیم اختر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ آپ ہمارے ساتھ تھے, اور کوئک انالیسز لیں گے آپ کی گفتگو کے اوپر بھی اور کراچی کی صورتحال پہ بھی. ڈاکٹر پروفیسر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب, میں لمبے چوڑے سوال میں نہیں جاؤں گا, ہمارا سوال یہی تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کیا چیلنجز ہیں, کیا مشکلات ہیں اگلے دو تین دن, بہت اہم خیال کیے جا رہے ہیں پارٹی کے لیے اور کراچی کی سیاست کے لیے, آپ کا انالیسز کیا ہے؟
دیکھیے واقعی یہ بات صحیح ہے, ایک تو وہی بات جو لندن میں الطاف حسین کی جو ضمانت ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہونا, دوسرے یہ کہ ایم کے ایم کی جو تنظیم ہے اس کو خاصی کاری ضرب لگی ہے رینجرز کے آپریشن کے ذریعے, اس کی مالیاتی پائپ لائن کو بھی خاصی حد تک روکا گیا ہے رینجرز کے آپریشن کے ذریعے, پھر بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, تو اس میں بہت زیادہ مشکل ہے. مگر اس میں دو باتیں ایک اہم ہیں, ایک تو یہ کہ ایم پی ایم نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس کے ان کے لوگ انڈیا گئے, ان میں کچھ کرمنلز ہیں جیسا کہ وسیم صاحب کہہ رہے تھے. تو دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ, اگرچہ کہ کراچی میں آپریشن سے حالات بہتر ہوئے ہیں, مگر بیسک سیوک پرابلمز ہیں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہیں, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت خراب ہو گیا ہے, پانی بجلی کا بہت خراب ہے, تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی عمل شروع کیا جائے, ایم کیو ایم کو بات چیت کی ٹیبل پہ لایا جائے, ان سے کہا جائے کہ کرمنل ایلیمنٹ کو علیحدہ کریں, اس کا کوئی طریقہ کار طے ہو, ایم کیو ایم ایک کھلی پارٹی بنے, پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ صورتحال مزید خراب ہوگی.
بہت شکریہ آپ پروفیسر توصیف احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے کراچی سے, آپ نے اپنا انالیسز دیا. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور دو پاکستان کی خواتین سائیکلسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے آخری ہمارے پاس 8 منٹ جس میں ہم بات کریں گے. پاکستان کے اندر دو باہمت باحوصلہ خواتین سائیکلسٹ ہیں جو اس مقصد سے اپنے گھروں سے باہر نکل آئی ہیں کہ وہ ملک کے اندر ٹوریزم کو, سیاحت کو, اس کو پروموٹ کر سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ میسج دے سکیں کہ پاکستان خواتین کے لیے اتنا غیر محفوظ بھی نہیں ہے, اور ان کا ایک مقصد جو ہے وہ اسپورٹس, اس کو بھی پروان چڑھانا ہے, صحت مند ایکٹیویٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہم بات کر رہی ہیں گل افشاں کی اور سمر کی, جہاں تک میری اطلاعات ہیں دونوں کمپیوٹر انجینئرنگ کر چکی ہیں, بہت پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خواتین ہیں, اور اس مقصد میں اور اس مشن کی طرف کیوں آئیں, کیسے آئیں, یہ انہی سے ہم معلوم کرتے ہیں. میں زیادہ تمہید میں جانا نہیں چاہوں گا, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پہ. بہت شکریہ گل افشاں, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور شاید سمر بھی آپ کے ساتھ ہوں اس وقت.
جی بالکل, السلام علیکم, میرا نام گل افشاں ہے, میں جھابیاں گاؤں سے میرا تعلق ہے. اس وقت میں نے نسٹ کالج آف ایم ای سے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے, اور میں پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہی ہوں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ میری اسپورٹس ایکٹیویٹیز 4-5 سال سے میں اس میں ان ہوں. میں نے پیرا گلائڈنگ, وال کلائمبنگ, راک کلائمبنگ, سیلف ڈیفینس کورس, اور ابھی ریسنٹلی سائیکلنگ میں ان ہوئی ہوں.
میرا نام سمر خان ہے, میرا تعلق لوور دیو کے پی کے سے ہے, اور ابھی ریسنٹلی میں نے ماسٹرز کیا ہے فزکس میں. اور گل کے ساتھ میری ملاقات ہے, جو ہماری نے ٹیم بنائی تھی, دیٹ واز اے ایئر بیک لاسٹ, جب ہم نے پی ایم اے کانپور سے پیرا گلائڈنگ کورس کیا تھا. تو وہاں سے آنرز ابھی 2 منتھس پہلے ہم نے پہلے شارٹ ٹور لیا تھا فرام اسلام آباد ٹو ایبٹ آباد ٹو نو دی کنڈیشنز آف روڈز, اور یو نو گھر سے باہر رہنے کا ایکسپیرینس وہ سارا, اور اسی کے بیس پہ ہم نے اپنا یہ پنجاب والا ٹور پلان کیا تھا.
کافی ایڈونچرس لگتا ہے, تو آپ کے ایکسپیرینس کیا رہے جو پہلا ٹور آپ نے کمپلیٹ کیا؟
جی
پہلے جو آپ نے ایک ٹور مکمل کیا اسلام آباد سے ایبٹ آباد کا, اس میں آپ کے کیا ایکسپیرینس رہے, خاص طور پہ راتوں کو باہر رکنا ٹھہرنا, کچھ بتائیے اس بارے میں.
जी, जब हमने एबटाबाद का टूर किया था तो हमें सबसे ज्यादा जो मसला था वो बारिश में चढ़ाई जो हमने चढ़ी थी उसके उसमें हमें अंदाजा हुआ था कि हमें अपने अगले टूर के लिए क्या तैयारी करनी है और हमारी बाइक्स की जो हमारी साइकिल्स थी उसकी कंडीशन. सो हमने उसके उसी के मुताबिक हमने कि हम कितने घंटों में कितने किलोमीटर कर सकते हैं, हमने अपना खुंजराब जो चाइना बॉर्डर तक हमने इस्लामाबाद से और वापस खुंजराब से हम आए 9 दिनों में. तो ये हमने उस एक टूर के ऊपर बेस करके हमने प्लानिंग की थी
कि एवरेज किलोमीटर्स पर डे हमारे कितने हो सकते हैं.
जी, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बुनियादी तौर पे आप मैसेज क्या देना चाह रही हैं? टूरिज्म, स्पोर्ट्स, व्हाट, या आप ये समझती हैं कि खवातीन वो भी बहुत लिबर्टीज के साथ, आजादी के साथ और इंडिपेंडेंस महसूस कर सकती हैं उस मुल्क के अंदर, और खासतौर पर जिन रीजन के साथ में आपने ट्रेवल किया है या जहाँ से आपका बुनियादी ताल्लुक है वो बहुत कंजर्वेटिव ख्याल किया जाता है?
जी जी, यही इमेज हमने इम्प्रूव करना था. वी वांटेड टू शो कि पाकिस्तान इज़ अ रियली सेफ कंट्री फॉर स्पोर्ट्स, फॉर एवरी पॉजिटिव एक्टिविटी, और फीमेल्स को स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारी इन्वायरमेंट काफ़ी सपोर्टिंग है. गिलगित हुंसा में काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इसको इंकरेज किया, और हमारे बगैर कहे या बगैर हेल्प मांगे दे आर सपोर्टिंग अस, एक्सपेंडिंग आर आईडीज, और वो लिंक्स खुद हमें इंटरव्यूज हमारे करवा रहे हैं ताकि हमारा मैसेज अक्रॉस द ग्लोब फैले. जी
लोगों, मैं देख रहा था आपका फेसबुक पेज, उसमें बहुत कुछ इंटरेस्ट के लिए मौजूद है. आप वहाँ पे लोकल जो आईकॉन्स हैं, जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, आप उनके उनके साथ बातचीत भी करती हैं, उनके मैसेजेस भी रिकॉर्ड करती हैं, ये सारा प्लान किस तरह से किया आप लोगों ने?
बेसिकली ये हम दोनों का वैसे स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक है तो हमने कुछ सोचा कि कुछ बड़ा करना चाहिए.
और एक्चुअली हमारे जो मैसेज है, हमारी पर्पस एक कॉल थी तो उस कॉल को हमने इसी पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ लिंक किया कि स्पोर्ट्स इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड टू इंप्रूव इट्स इमेज. सो साइकिलिंग वाज वेरी बेस्ट ऑप्शन, यही हमारी हॉबी थी, इसी में हमारा कमांड भी था, इट वाज आवर आइडेंटिटी.
ठीक है, लेकिन समर और गुली अफशम, हमें अदर देन जो सोशल चैलेंजेस हो सकते हैं उसके अलावा हम तो ये देखते हैं कि रोड साइड सेफ्टी के एतबार से भी पाकिस्तान में कोई साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक्स नहीं है, तो इस रेफरेंस में आपको मुश्किल नहीं आई खासतौर पे जी टी रोड पे ऊपर साइकिल चलाते हुए?
असल में हम लोगों की जो साइकिल थी वो पूरी माउंटेन बाइक थी, तो वो उसमें शॉक्स वगैरह थे, लेकिन हमें ट्रैफिक का इशू आ रहा था, वेदर का स्नो फॉलिंग हुई थी एंड जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी उसकी वजह से हमें काफी मुश्किल का सामना था. उसके अलावा किसी किस्म का कोई मसला नहीं था. चाइना ने बिल्कुल रोड वो नहीं बनाई है जो सिल्क रूट जिसे कहते हैं, एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड. जी, तो वो उस हमें रोड का कोई इशू नहीं आया. हमें जो मसला हुआ था वो ये नेचुरल जो हमारे क्लाइमेट था उसकी वजह से हुआ, तो उसके अलावा किसी किस्म का कोई मसला नहीं.
आप दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक मैसेज देना चाहूंगा, आप यकीनन आप उसको एंडोर्स भी करेंगी. रोड सेफ्टी के हवाले से हम देखते हैं कि मामूली सी चीजें जैसे एक छोटा सा रिफ्लेक्टर है, शायद उसकी कीमत आज भी 1 रुपया हो, वो जान बचा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो देही इलाकों में साइकिल्स पे सफर करते हैं वहाँ पे रिफ्लेक्टर नहीं होता, या इवन पैदल चलते हुए तो बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं. आपने इस तरह के जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको किस हद तक अडॉप्ट कर रखा है और कैसे आप उसका पैगाम दूसरों को भी देना चाहेंगे?
बेसिकली हमने तो हेलमेट्स और हमने इवन एल्बो कैप्स से नी कैप्स भी हमने पहने हुए थे, हमारी जैकेट्स भी जो थी उस पे रिफ्लेक्टर लगे होते थे. ये बहुत जरूरी होते हैं कि रात के वक्त जब आप खासतौर पर ट्रेवल कर रहे हो, साइकिल एक ऐसी सवारी है जिसको आप बहुत मामूली सी या गाड़ियां बहुत स्पीड में जा रही होती हैं,
सही,
तो इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए कि आपकी प्रोमिनेंट रहे साइकिल.
और सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए नहीं, इवन वो जो पैदल चलने वाले लोग हैं या बाकी लोग जो रोड पे मौजूद हैं, खा वो मैं कहता हूँ रेडी और ट्रॉली पे क्यों नहीं है, उनके भी एहतमाम होना चाहिए. अब हमें आप बताइए आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, क्या आप अपने इस मिशन को कहीं आगे भी लेके जाना चाहती हैं, जैसे आप कंट्री वाइड या अक्रॉस द पाकिस्तान आप इसको ट्रेवल करना चाहें?
सर, नेशनल तो हमने एक इम्पैक्ट एग्जाम्पल सेट करनी थी हमारी फीमेल्स के लिए कि उनमें थोड़ा करेज है और उनकी इनसिक्योरिटीज दूर हो. अब हम अपने इसी मैसेज को लेकर इंटरनेशनली भी जाना चाहेंगे और हमने पाकिस्तान का इमेज इम्प्रूव करें कि इट्स नॉट द एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, वी आर रियली पॉजिटिव और स्पोर्ट्स इज अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी. इसी को प्रमोट करना है और पाकिस्तान की मैसेज और इसकी पॉजिटिविटी को सबको दिखाना.
अभी तक क्या आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला है, स्पेशली स्पॉन्सर्स की जानिब से या बाकी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है? या
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, जितना बेशक मीडिया पे अभी हो चुका है हमारा, लेकिन हम लोग स्पॉन्सर्स की तलाश में है ताकि अगला टूर हम लोग इससे बड़े मैसेज के साथ और बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान का छोड़ें. तो हम इंटरनेशनली स्पॉन्सर्स को ढूंढ रहे हैं जो हम दोनों को, क्योंकि हम लोगों में स्पिरिट है, हमें विल है, हमें स्ट्रेंथ है.
फैमिलीज ने आपको अलाउ कर दिया, आपकी अपनी फैमिलीज ने आपको आसानी से अलाउ कर दिया?
फैमिलीज ने अलाउ किया हुआ है, दे सपोर्ट अस, उन्होंने हमें यहाँ तक भेजा, हम चाइना तक होके 9 दिन घर से बाहर रहे, दे टोटली सपोर्ट अस.
समर,
सो वी जस्ट नीड अ स्पॉन्सर.
जी समर,
सर हमारी इंटेंशन थी, जी जी, और इसीलिए ना हमारी अल्लाह ताला ने बहुत हेल्प की और आगे भी इंशाल्लाह हमें फैमिली की पूरी सपोर्टिव, इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ باقی لوگوں کو بھی گائیڈ کریں اور ان کے لیے بھی ایک ایسا سورس اور پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے اسپورٹس میں آگے آئیں.
بہت شکریہ اور گڈ لک گلی افشاں اور سمر, آپ دونوں کے لیے نیک خواہشات, آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. سامعین, اس کے ساتھ ہم اپنا آج کا یہ پروگرام یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے. اسد حسن کو اجازت دیجیے. وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی